भावना मृत संघ जो इस्कॉन है, हाँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है लोगों को भगवत धाम लेकर जाना, लोगों को भगवत धाम जाने की योग्यता प्रदान करना, सिंपल टर्म्स में। और श्रील प्रभुपाद को इस बारे में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। श्रील प्रभुपाद को ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लेने के बाद ये वाली बातें की। एक्चुअली में जब श्रील प्रभुपाद ने संन्यास नहीं लिया तो उससे बहुत पहले भी दीक्षा हो चुकी थी श्रील प्रभुपाद की, लेकिन श्रील प्रभुपाद फुल्ली कन्विंस थे पूरी तरह से कि क्या करना है, चाहे उनके पास में कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी। तो कृष्ण भामरामृत संघ है भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन हम लोग अकेले भगवान कृष्ण में अपनी श्रद्धा विकसित करके भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। जब तक हमें आप ध्यान उधर क्यों आपका बार बार जा रहा है, it's distracting me, you know. I'm what's the point? You want to play with kids or what? So then, you know, you don't have to be nice to the kids. Okay? I mean, we are talking very serious matter. Unfortunately, आप बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हो। आप आईज प्लग झपकाते हो, मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ। So that's a problem for you and for me also. So हम लोग केवल भगवान कृष्ण में हम सोचे कि हम तो भगवान कृष्ण में अनुराग उत्पन्न कर लेंगे, चलो चलते हैं भैया पहुंचेंगे, नहीं होगा। जब तक हम श्रील प्रभुपाद में अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा जब तक विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान कृष्ण को भी सही से, चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को अच्छे से एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, हम उनको नहीं समझ पाएंगे, कोई चांस नहीं है। हमें चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझने के लिए, भगवान कृष्ण की महानता को समझने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। और श्रील प्रभुपाद के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न करने का मतलब है पूरे इस्कॉन के साथ मिलकर चलना। ये अलग एक टॉपिक है, हम अभी हम इस चीज पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो हम श्रील प्रभुपाद में श्रद्धा ही नहीं है हमारी। तो अभी हम बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के लिए श्रद्धा विकसित करने की। बार बार सुबह शाम श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय करने से नहीं होगा कुछ। जब तक हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत जो उन्होंने की ग्रंथों को लिखने में, और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी कि श्रील प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया श्रील प्रभुपाद ने, तब तक हम श्रील प्रभुपाद के प्रति अपना ऋण नहीं उतार पाएंगे। और मुझे आप में से कोई व्यक्ति ये बता दे कि श्रील प्रभुपाद का ऋण नहीं उतारा तो भगवत धाम कैसे चले जाएंगे, मतलब क्या संभावना है जाने के लिए? कोई संभावना नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने 21 नवंबर 1956 में श्रील प्रभुपाद 1961 में श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया था वृंदावन में, ओके। लेकिन 1956 में प्रभुपाद घर प्रभुपाद ने छोड़ दिया था। तो श्रील प्रभुपाद ने घर तो छोड़ दिया था और प्रभुपाद कभी वृंदावन रह रहे थे, फिर दिल्ली भी रुके। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। तो प्रभुपाद उस समय भी चिट्ठियां लिख रहे थे पॉलिटिशियंस को, कोई भी जिसको भी इंटरेस्ट है, जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में हेल्प कर सकता है, श्रील प्रभुपाद सबको चिट्ठियां लिख रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने 21 नवंबर 1956 को श्रील प्रभुपाद ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद मैं भगवत धाम कैसे जाऊंगा, मुझे पूरा आइडिया है। श्रील प्रभुपाद उनको 1956 में चिट्ठी में लिख रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो इस संसार में जितने भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उन सबको भगवत धाम ले जाने के लिए मैंने ये मूवमेंट शुरू किया है। उस समय लीग ऑफ डिवोटीज था मूवमेंट का नाम। अभी कृष्ण भावनामृत संघ अभी पिक्चर में नहीं आया था, श्रील प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से प्रचार कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि इस काम को करने के लिए मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उन सबको भगवत धाम ले जाने के लिए मैंने बैक टू गॉड हेड भगवत दर्शन पत्रिका शुरू की। उस समय भगवत पत्रिका चार पेज की हुआ करती थी, बेसिकली एक सिंगल पेज था, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, 1, 2, 3, 4 आगे पीछे करके 4 पेज की पत्रिका हुआ करती थी वो। और उसकी कीमत थी 6 पैसे, भगवत दर्शन जो बेसिकली एज अ न्यूज पेपर श्रील प्रभुपाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो 4 पेज की मैगजीन श्रील प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद का गोल क्या है उस भगवत दर्शन को, उस पत्रिका को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि जितने भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, सब लोगों को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। कोई छोटा गोल नहीं है ये। भक्ति सिद्धांता सरस्वती कह रहे हैं कि अगर मैंने एक भी शुद्ध भक्त बना दिया तो मैं सोचूंगा मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सभी को लेके जाना है, इसलिए मैंने ये 4 पेज की पत्रिका मैंने शुरू की है। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि प्लीज आप मेरे को पागल मत समझना, आप ऐसा मत सोचना यार पागलों वाली बात कर रहे हैं, आप प्लीज मुझे मैड मैन पागल मत समझना। जब मैं ये बोलता हूं कि मैं ये शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाऊंगा, आई मीन क्या कन्विक्शन है। और श्रील प्रभुपाद उनको बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा भगवत धाम भैया शरीर छोड़ने के बाद, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं मुझे पागल मत समझना। और भगवत धाम वापस जाना एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये हम सबके लिए संभव है। ये 1956 में श्रील प्रभुपाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका कोई भी उनको आंसर नहीं भेजा। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों को चिट्ठियां भेजी, कॉरेस्पॉन्डेंस की, उनको पत्रिकाएं भेजते थे अपनी, लेकिन लोग श्रील प्रभुपाद को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, कोई जवाब नहीं देते थे, या कभी जवाब देते थे, जवाब आता था तो बोलते थे, लोग बोलते थे वेल डन, बहुत अच्छा है, करते रहो, आप मेरी हेल्प करोगे, मैं नहीं हेल्प कर सकता, आप करते रहो। और ये हालात उस समय श्रील प्रभुपाद के पास, श्रील प्रभुपाद वृंदावन और दिल्ली के बीच में रह रहे थे, मथुरा और दिल्ली के बीच में, कभी मथुरा रह रहे थे कभी दिल्ली रह रहे थे, तो उनके पास कोई फिक्स्ड रेजिडेंस नहीं था कि हाँ यार ये घर है, शाम को यहां पर आना है, नहीं था। खाना खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ गारंटी नहीं थी। फिर भी श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि मुझे सब लोगों को लेके जाना है, मुझे पता है कैसे लेके जाना है, कैसे जा सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद है। और श्रील प्रभुपाद ने 1955 में श्रील प्रभुपाद मथुरा में रुके थे। श्रील प्रभुपाद मथुरा में रुक रहे थे गौड़िया मठ के अंदर, और वहां पर वो हार्मोनिस्ट मैगजीन है उसका संपादन कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे श्रील प्रभुपाद। और तो वहां पर भक्ति सारंग महाराज आए, और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने उनको बोला कि आप दिल्ली चलो मेरे साथ में, तो मुझे वहां पर, आप वहां पर हिंदी की पत्रिका है गौड़िया पत्रिका उसका भी संपादन करना और प्रीचिंग भी कर लेना। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला फाइन ठीक है। श्रील प्रभुपाद वहां से मथुरा से दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में गौड़िया मठ में आके उन्होंने रुकना शुरू कर दिया। लेकिन इतने मतलब खराब डिवोटिस थे, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि मतलब बिल्कुल लेजी आलसी, कोई मतलब प्रीचिंग के लिए कोई रुचि नहीं है, किसमें प्रॉपर टाइम से डेटी वर्शिप नहीं कर रहे, आपस में झगड़ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं एडिटिंग कर नहीं पा रहा था। तो भक्ति सारंग महाराज को उन्होंने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो महाराज ने बोला ओके फाइन, तो मैनेजमेंट करना शुरू कर दो। तो श्रील प्रभुपाद ने वहां पे थोड़ा मैनेजमेंट करना शुरू किया, एक डिसिप्लिन लाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन उनका जो मेन फोकस था, मेन फोकस वो श्रील प्रभुपाद जो हार्मोनिस्ट है और गौड़िया पत्रिका है उसको श्रील प्रभुपाद बढ़ाना चाहते थे। उस समय जो गौड़िया पत्रिका है उसका पेपर भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, फोटोज भी अजीब सी होती थी। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जो जो हमारी मैगजीन्स हैं वो इलस्ट्रेटेड वीकली टाइप जो ग्लोबल मैगजीन्स हैं उनके साथ कम्पीट करे। इतना अच्छा फाइन पेपर होना चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए जिससे कि लोग उसको पढ़ें देखें तो उनको बहुत अच्छा लगे। तो श्रील प्रभुपाद ने तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज कैलकटा में बेसिकली ज़्यादा उनका बेस वहाँ पे रहता था, और उनके सेक्रेटरी थे रामानंद प्रभु। तो भक्ति तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बहुत सारे सजेशंस दी कि ऐसा करना चाहिए, पेपर हमें बढ़ाना है, और मैं कलेक्शन भी कर सकता हूँ, लेकिन कलेक्शन करने के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मेरी धोती भी खराब है फटी हुई है, तो मैं ऐसे हालत में जाऊंगा। उनको धोती खराब है कुर्ता खराब है का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उस कंडीशन में वो जाएंगे तो कलेक्शन नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम था, अपने लिए नहीं बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को प्लीज एक धोती कुर्ते का अरेंजमेंट आप करवा दीजिए। वो हालात की हम बात कर रहे हैं, उन हालात के अंदर श्रील प्रभुपाद बात कर रहे थे कि ग्लोबल लेवल पे प्रीचिंग करनी है, पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत फैलानी है। और श्रील प्रभुपाद ने जाकर लोगों से मिले, प्रीचिंग करते थे श्रील प्रभुपाद, वाइट ड्रेस में थे। तो लोगों ने बोला कि आप हिंदी में चैतन्य चरितामृत हमें चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने हिंदी में चैतन्य चरितामृत लिखी। आई डोंट नो वो कॉपी अवेलेबल है कि नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि कई वॉल्यूम्स बनेंगे, इसके कई बुक्स बनेंगी। तो श्रील प्रभुपाद ने लोगों से बात कर ली कि लोग तैयार हो गए 2500 रुपए में एक वॉल्यूम खरीदने के लिए। 1956 की बात कर रहे हैं, 1955-1956 की बात कर रहे हैं हम। 2500 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय। तो लोगों ने बोला ठीक है आप छापो, हम 2500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। उसको छापने की कॉस्ट, अगर प्रभुपाद ने बोला कि अगर हमने एक किताब छाप ली, एक वॉल्यूम छाप लिया, तो लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर दूसरे वॉल्यूम भी धीरे धीरे करके छप जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज को चिट्ठी लिखी कि ये डेवलपमेंट्स हैं, बहुत आशा लग रही है मुझे, हो जाएगा काम। तो ये बुक्स छापने का खर्चा 600 रुपये है, तो आप प्लीज 600 रुपये का अरेंजमेंट कर दो। मना कर दिया उन्होंने, नहीं है हमारे पास पैसे। प्रभुपाद ने इतनी प्रिपरेशन की, बेकार हो गई वो प्रिपरेशन, भौतिक दृष्टि से देखें तो। मना ही नहीं किया उन्होंने, नहीं है पैसे। उनको बोला, यार आप क्या मतलब, हम लोग आराम से चलना चाहते हैं, आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो, तो प्लीज। उन्होंने उनको बहुत ही पोलाइटली उनको बोल दिया कि आप मत छोड़ के चले जाओ। तो श्रील प्रभुपाद ने वो मत छोड़ दिया। उन्होंने लिखा, रामानंद प्रभु ने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के बिहाफ में, कि जो यहाँ के जो मठ के डिवोटीज हैं वो न्यू फाइट्स हैं, उनको समझ नहीं है, आपके प्रति अपराध कर रहे होंगे, आप बहुत महान वैष्णव हो तो उनके लिए अच्छा नहीं है, तो आप अगर वापस मथुरा शिफ्ट होना चाहो तो आप मथुरा शिफ्ट हो जाओ। बेसिकली उनको बोला जाने के लिए पोलाइट लैंग्वेज में। तो श्रील प्रभुपाद वहां से निकल के आए, और कैशी घाट में एक मंदिर था, गोपाल जी का मंदिर था। तो श्रील प्रभुपाद वहां पर 5 रुपये महीने का किराया फिक्स करके उधर रहना शुरू कर दिया श्रील प्रभुपाद ने। और श्रील प्रभुपाद को कुछ टाइम के बाद में राधा दामोदर मंदिर के गोस्वामी थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आके रह जाओ, आप 5 रुपये किराया हमें दे देना, इधर आप आके रहना शुरू करो। श्रील प्रभुपाद वो रूम देखने गए, श्रील प्रभुपाद वहां पे रहना भी चाहते थे, लेकिन वो रूम जो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को दिखाए, जो आज आप सब लोग जाके देखते हो राधा दामोदर मंदिर में, जो किचन है श्रील प्रभुपाद की, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद रहते थे, वो रहने लायक नहीं थे बेसिकली। उसको रिपेयर वगैरह चाहिए थी, बिजली नहीं थी वहां पर, तो उसको करने का खर्चा 500 रुपये था। श्रील प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे, तो वहां पे शिफ्ट नहीं हो पाए श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद को क्योंकि प्रीचिंग करनी थी, इसलिए वो बार बार दिल्ली आते थे, जिन लोगों को प्रीचिंग कर रहे थे, कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए थे श्रील प्रभुपाद के, तो उन कॉन्टैक्ट्स उन लोगों के साथ में, जहां पर भी कोई बोलता था कि वो फलाने व्यक्ति से आप मिलो, हो सकता है कुछ वो इसमें रुचि दिखाए, तो श्रील प्रभुपाद जाते थे उसके पास में, और कोई उनको वेलकम नहीं करता था, किसी ने श्रील प्रभुपाद को वेलकम नहीं किया, हमारे बड़े महान भाग्य है आप यहां पर आए। श्रील प्रभुपाद लोग सिर्फ एक, क्योंकि एक डिवोटी ड्रेस में थे, भक्त को अनादर नहीं करना चाहिए, इस कारण से उनकी बात सुन लेते थे बस, कुछ बहुत वेलकम करने वाली बात नहीं थी कि हाँ एक डिवोटी आया है, चलो इनकी हेल्प करते हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा कोई थॉट नहीं थी किसी की एक्चुअली में। छिपीवाड़ा में श्रील प्रभुपाद के एक कॉन्टैक्ट थे, वो छिपीवाड़ा जो मंदिर है वहां पे उनको रहने के लिए एक रूम दे दिया उनको, चलो आप यहाँ पर आके रहना शुरू करो। और उसके पास ही था जो प्रिंटर था, जहां पर वो बुक्स छपवाते थे अपनी, ये पत्रिका मैगजीन भगवत दर्शन पत्रिका छपवाते थे। श्रील प्रभुपाद सुबह सुबह वहां पहुंच जाते थे 7 बजे उनके पास में। तो सुरेंद्र कुमार जैन था उनका नाम, तो वो श्रील प्रभुपाद से पूछते थे, आपने नाश्ता किया? वो नाश्ता भी बेसिकली नहीं, नाश्ता नहीं किया होता था उन्होंने, तो वो जैन ने एक्चुअली में भूला, तो जो ये सुरेंद्र कुमार जैन है वो बता रहे हैं कि उन प्रभुपाद को मतलब जब वो मिलते थे तो कैसे बातचीत होती थी प्रभुपाद से। तो उन्होंने कहा कि वो मेरा इम्प्रेशन, मेरा उनके बारे में ये सोच थी कि बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं, साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं, और मुझे उन पर दया आती थी कि जिस हालात में वो मेरे पास आते थे। शिला प्रपात कभी भी रिक्शा में बैठ के उनके पास नहीं गए, कभी भी पैदल जाते थे, पैसे नहीं थे, पैसे बचाना चाहते थे शिला प्रपात के लोगों की भगवत दर्शन छपवा सके और उसको प्रचार करना है, बेसिकली ये उनका आइडिया था। कह रहे थे कि उनके पास में 25 पैसे भी नहीं होते थे और कहते थे कि वो पैदल आते थे और उन्होंने मतलब नाश्ता नहीं किया होता था। वो सुबह प्रेस में आ जाते थे, जब मैं उनसे पूछता था कि आपने कुछ खाया, तो शिल प्रपात ने कहा नहीं नहीं मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन मैं तो प्रूफ देखने आया हूँ, आप मुझे प्रूफ दिखाओ जो पत्रिका है ताकि मैं उस प्रूफ को देखूं और उसको छुपवाएं। तो जो मिस्टर जैन है वो उनको बोलते थे नहीं आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता मंगवाता हूँ और फिर प्रूफ भी मंगाता हूँ। तो शिल प्रपात शाम तक वहां बैठे रहते थे, सारे प्रूफ चेक करते थे। और जो मिस्टर जैन है वो बता रहे हैं कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता था प्रिंटिंग, तब तक शिल प्रपात वहीं बैठे रहते थे एक्चुअली में। अमेजिंग है यार। और शिल प्रपात कह रहे थे कि जब वो, क्योंकि काफी टाइम वहां पे बिताते थे, तो जो मिस्टर जैन है उनके साथ में शिल प्रपात की काफी डिस्कशन होती थी। और तो मिस्टर जैन कहते थे कि जब मेरी उनसे बात होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे ये पता चल गया था कि इनको बहुत कुछ आता है, इनको बहुत नॉलेज है, इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है एक्चुअली में। और उन्होंने कहा कि शिल प्रपात उनको एक फ्रेंड की तरह लगते थे, ऐसे नहीं लगता था कि कोई काम करवाने आ रहे हैं, फ्रेंड की तरह आ रहे थे, मिलते थे, बात करते थे, कुछ मतलब कुछ जल्दबाजी नहीं थी। और ये बात शिल प्रपात के बारे में हजारों लोगों ने बोली। शिल प्रपात इनफैक्ट जब अमेरिका भी गए और सैली अग्रवाल के घर में भी ठहरे, तो भी उनको किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि शिल प्रपात को कोई तकलीफ हो रही है, कुछ असुविधा हो रही है। उनको बहुत सारी तकलीफें थी। जिस फ्रिज में शिल प्रपात प्रसाद रख रहे थे उसी फ्रिज में सैली अग्रवाल मीट रख रही थी। तो उन्होंने बोला, और सैली अग्रवाल ने आई एम सॉरी मैं इसमें मीट रख रही हूँ, शिल प्रपात ने कहा नो 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 प्रॉब्लम, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। तो शिल प्रपात को उन्होंने बोला कि उनका मिशन एक ही था कि किसी तरह लोगों को भगवत धाम लेके जाएं। जेब में 25 पैसे नहीं है, और मतलब वो विजन के साथ में काम कर रहे हैं। कह रहे हैं उनकी जो जो फाइनेंशियल को क्या बोलते हैं, जो माली हालत काफी, उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी उनकी, और कई बार वो छपवा भी नहीं पाते थे, भगवत दर्शन पत्रिका छपवाने के पैसे भी नहीं होते थे, कई बार पेपर भी नहीं होता था। तो जो मिस्टर जैन है वो उनको बोलते थे चलो ठीक है मैं कागज लगा देता हूँ। तो फिर अब कागज लगा दिया तो पैसे उनसे, चलो आज नहीं है कब दोगे पैसे। तो शिल प्रपात उनको बोलते थे पैसे आएंगे मेरे पास में, मैं आपको जरूर दूंगा पैसे, आप चिंता मत करो। तो लेकिन जो मिस्टर जैन है कहते हैं कि मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि भैया आएंगे कहां से पैसे, कह रहे क्योंकि मुझे पता है उनकी क्या हालत है। तो कह रहे हैं अगर मैंने उनसे पूछ लिया कि आपके पास पैसे कहां से आएंगे तो उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि कोई सोर्स नहीं है पैसे का। बिल्कुल उन्होंने बोला कि ही वॉज अ पॉपर, बिल्कुल कंगाल थे वो। और वो कह रहे हैं कि शिल प्रपात भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उसको, उसका प्रचार करना चाहते थे। और शिल प्रपात तब भी एक आंदोलन के बारे में सोचते थे, वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में एक आंदोलन चलेगा। और श्रील प्रभुपाद का उस समय भी दृढ़ विश्वास था कि सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे लोग वापस भगवत धाम जा सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद उनसे पत्रिका छपवाने के बाद उसको उठाते थे पत्रिकाओं को और जाते थे बांटने के लिए खुद अपने हाथ से। थक जाते थे, वो चाय की दुकान है वहां पर उसके बेंच पे बैठ गए रेस्ट करने के लिए, कोई व्यक्ति साथ में आके बैठ गया तो उसको बोलते थे प्लीज पत्रिका ले लो। लोगों के घरों में जाते थे पत्रिका देने के लिए और कई बार लोगों को भगा देते थे। एक बार श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत अमीर व्यक्ति था उसके घर की बेल की और उनको बोला कि मैं ऐसे ये पत्रिका देने आया हूँ, भगवान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अरे भाग जाओ यहाँ से, खड़े मत हो यहाँ पे, नजर मत आना। ऐसा उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने फेस किया और अकेले थे, नितांत अकेले। गौड़िया मठ से कहीं से कोई उनके पास सपोर्ट नहीं थी कहीं पर भी, एक नए पैसे की सपोर्ट जिसे कहते हैं, गो अवे वी डोंट वांट यू हियर, अमेजिंग। उस समय भी श्रील प्रभुपाद ने सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया। श्रील प्रभुपाद पूरे सिद्धांत के ऊपर हमेशा दृढ़ रहे। और श्री प्रभुपाद ने उस समय भी जो बीटीजी में आर्टिकल्स लिखे, उस समय 1955-56 की मैं बात कर रहा हूं, श्री प्रभुपाद ने लिखा कि जो पूरे संसार के जितने भी लीडर्स हैं वो पैसा बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो पैसा जो वो बना रहे हैं वो क्योंकि भगवान से कोई रिलेशन नहीं है इसलिए वो इलीगल मनी है बेसिकली, और क्योंकि वो पाप पूर्ण पैसा कमा रहे हैं इसलिए उसका उनको फल भी भोगना पड़ रहा है। और उसका फल कैसे भोग रहे हैं लोग कि दुनिया तबाह होने के हथियार बन रहे हैं, हर कंट्री जो है वो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बना रही है, हथियार बना रही है, और फिर लोग पैसा खर्च करेंगे कि कैसे इन हथियारों को यूज करने से रोका जाए। ये श्रील प्रभुपाद उस समय आर्टिकल्स में लिख रहे थे और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये कर्म फल है, अगर भगवान से नहीं जुड़ोगे तो ये कर्म फल है। श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, उन्होंने बोला कि एक कंजूस व्यक्ति था जिसने बैक टू गॉडहेड मैगजीन नहीं खरीदनी, उसने नहीं खरीदा, हमने रिक्वेस्ट किया खरीद लो, नहीं खरीदा, लेकिन कर्म फल उसको ऐसा मिला कि बीमार पड़ गया, 20,000 रुपए उसने उस समय खर्च दिए और लास्ट में मर गया, ये कर्म फल है। उनका एक और व्यक्ति ने भगवान की सेवा में पैसे खर्चने से मना कर दिया, उसके फैमिली में डिस्प्यूट हो गया आपस में, भाइयों में या जिसमें भी आपस में डिस्प्यूट हो गया, कह रहा उसने 30,000 रुपए खर्च दिए और घर की शांति भी चली गई उसकी, तो उन्होंने बोला ये कर्म फल है। अगर हम भगवान के साथ में अपने एक्टिविटीज को नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। एक श्रील प्रभुपाद को जब श्रील प्रभुपाद बाय पोस्ट भी भेज रहे थे पत्रिकाओं को, तो एक आर्य समाजी मिला, उसने बोला कि अपना काम अच्छे से करो, क्या जरूरत है भगवान को पूजने की, भगवान को पूजने की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम अपनी ड्यूटी ठीक से करो, किसी का मन मत दुखाओ, अच्छे काम करो तो भगवान को पूजने की कोई जरूरत नहीं है, सब ढकोसला है। तो श्रील प्रभुपाद ने उस पर आर्टिकल लिखा, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप भगवान को पूजोगे नहीं तो आप नैतिकता का पालन कैसे करोगे, कर्तव्य का निर्वाह करोगे कैसे। जब तक एक भगवान सेंटर में नहीं होंगे, आपकी नैतिकता अलग है, उसकी नैतिकता अलग है, उसकी नैतिकता अलग है, कैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे आकर, एक मंच पर आकर, एक धरातल पर आकर किस तरह से आप आपस में कोऑर्डिनेशन करके समन्वय करके चल सकते हो, पॉसिबल नहीं है जो आप कह रहे हो, तो आपकी बात में कुछ लॉजिक नहीं है। मैं दोबारा से आपको बता दूं, ये उस समय की बात है जब शीला प्रभुपाद की जेब में 25 पैसे भी नहीं होते थे। ये तब की बात है, तब शीला प्रभुपाद ये सब बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने शीला प्रभुपाद को चैलेंज किया। शीला प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे भगवत दर्शन। उन्होंने बोला कि क्या तुम हमें भगवान दिखा सकते हो अगर है तो। तो शीला प्रभुपाद ने वहां पर कोट किया, शीला प्रभुपाद ने बोला कि जो नई दिल्ली है सेक्रेटरिएट जो बिल्डिंग है, कह रहे वहां पर स्टैचू एक लिबर्टी का स्टोन लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि जो स्वतंत्रता है वो अपने आप नहीं मिल जाती, उसको कमाना पड़ता है, तो आप उसका सुख ले सकते हो। और श्रील प्रभुपाद ने बोला ये इतनी भौतिक वस्तु, बेकार वस्तु जो स्वतंत्रता है, उसको जब प्राप्त करने के लिए करोड़ों लोग मर गए और इतनी प्रॉब्लम्स है, उसको जब प्राप्त करने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है, भगवान क्या तुम्हारे नौकर हैं कि मुझे देखने की इच्छा है आ जाओ सामने आ जाओ, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने बोला कि जब स्वतंत्रता जैसी बेकार वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो भगवान को भी अगर आप देखना चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद ने और उस समय क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। श्रील प्रभुपाद भगवत दर्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे थे। एक सुनसान सड़क थी, एकदम एक गाय आई और उसने श्रील प्रभुपाद को सींग मार के घायल कर दिया, नीचे गिर गए, बेहोश हो गए, बहुत टाइम तक पड़े रहे, किसी ने आके उनको उठाया नहीं। बहुत टाइम के बाद अपने आप उनको होश आया तो उठ के वापिस जहां पे रह रहे थे वहां पर पहुंचे। गर्मियों के दिन थे, मई जून के का महीना था, लोग मर रहे थे गर्मी से, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद उस गर्मी के अंदर भी जा रहे थे और भगवत दर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपने कंधे पर पुस्तकों को उठाकर। श्रील प्रभुपाद को हीट स्ट्रोक हुआ और श्रील प्रभुपाद जमीन पे गिर गए। तो बाय चांस की बात है कि किसी व्यक्ति को उन्होंने पहले प्रीचिंग कर रखी थी, वो अचानक वहां से निकल रहा था कार में, उसने देखा जो गिरे हुए प्रभुपाद, उन्होंने उनको उठाया, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनको बोला भैया आपको हीट स्ट्रोक हो गया, लू लग गई है आपको, आप प्लीज रेस्ट करो, इधर उधर मत जाओ। एक बार जब दिल्ली में प्रभुपाद रह रहे थे तो उनको किसी ने बताया कि जापान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, और उसमें आपको भी भाग लेना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने वो सब उनसे डिटेल ली और वहां पर उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस किया, चिट्ठी लिखी उनको। वहां पे जापान में एक व्यक्ति थे मिस्टर नकानो, उनको बोला कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, और उनको अपने उन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी भेजे कि ये मेरे वर्क्स हैं, तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो भारत के आचार्य हैं मैं उसको उनका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ आपके यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन होगी बहुत ही अच्छी होगी सब लोगों के लिए। तो उन्होंने चिट्ठी भेजी वापस मिस्टर नकानो ने कि फाइन आ जाओ जापान, आप यहां पर आओगे। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतर गए, वापस एयरपोर्ट तक पहुंचाने तक सारा खर्चा हमारा है, सारा खर्चा हम करेंगे, आपके रहने का, खाने का, आने जाने का सारा खर्चा हमारा है, बस आप पहुंच जाओ जापान। उस समय 3,500 रुपये का खर्चा था जाने के लिए। तो वह श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है फाइन, 2-3 महीने का टाइम था उनके पास में, उन्होंने बोला ठीक है मैं पूरी ट्राई करता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया के अंदर चिट्ठियां लिखी, घर घर गए लोगों के पास में, श्रील प्रभुपाद कि मैं ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठियां लिखी, जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे उनके पास गए श्रील प्रभुपाद, उनको चिट्ठियां लिखी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनके ऑफिस के बाहर जाके बैठ गए, उनको जाकर मिले, मना कर दिया उन्होंने। जितने भी लोगों को श्रील प्रभुपाद जानते थे, चाहे एक ही बार मिले हो, उनके पास गए श्रील प्रभुपाद बार बार, उनको दिखाया सारी चीजें, और उन जापान से उनके पास एक सर्टिफिकेट भी बन के आया, एक लेटर आया कि मतलब ये इनका जितना भी वहां पर रहने का खाने का सारा खर्चा स्पॉन्सर्ड है और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो इनको आप वहां पर जापान में आने दो। श्रील प्रभुपाद सबको दिखाते थे, देखो ये जापानी हमारे बारे में ये लिख रहे हैं, तो आप हेल्प करो, सिर्फ 3,500 रुपये, कहीं से कोई इंतजाम नहीं हुआ। 15 दिन रह गए जाने में कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो सेमिनार था, तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हीं को एक केबल तार भेजा उनको, क्योंकि अब चिट्ठी भेजने का टाइम नहीं रहा, अब तो मतलब डू और डाई वाली बात थी। श्रील प्रभुपाद ने बोला, मैंने भैया सब जगह हाथ पैर चलाए, मेरे पास पैसे नहीं आने के, आप अगर अरेंज कर सकते हो तो मैं आ सकता हूँ, नहीं तो आना मुश्किल है। तो मिस्टर नकानो ने बोला, हमारे पास पैसे नहीं है, हम यहाँ पर आप आ जाओगे तो हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन 3,500 रुपये हमारे पास नहीं है खर्चने के लिए। 3-4 महीने श्रील प्रभुपाद ने इसके लिए प्रयास किया था, लास्ट में मना हो गया, एक्चुअली में नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद ने इतना परिश्रम किया उसके लिए, इतना परिश्रम किया, क्या प्रेजेंट करना है वहां पर, कैसे प्रेजेंट करना है, ग्राफिक्स बनाने हैं, बहुत श्रील प्रभुपाद ने उनको आर्टिकल्स बना बना के भेजे कि मैं 1 महीने तक अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं वहां पर 1 महीने अलग अलग विषयों पर, मैं वहां पर जो भारत की फिलॉसफी है, सिद्धांत है, वो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई हेल्प नहीं की श्रील प्रभुपाद की, कोई हेल्प नहीं की। 1961 में श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का व्यास पूजा थी, तो श्रील प्रभुपाद ने व्यास पूजा अटेंड किया वहां पर, और श्रील प्रभुपाद ने अपनी ऑफरिंग, अपनी जो उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने ऑफरिंग लिखी थी, वो उन्होंने सारे उनके गुरु भाई बैठे हुए थे उनको सुनाई। ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप हैरान हो जाओगे कि यार हम सोच ही नहीं रहे ऐसी बातें। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप सब मेरे गुरु भाई यहाँ पर आए हो, हमारे स्वामी, हमारे गुरुदेव की व्यास पूजा मनाने के लिए, और हम सब मिलकर उनकी व्यास पूजा मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ फल फूल चढ़ाना उनकी पूजा नहीं है, केवल जो व्यक्ति गुरु की शिक्षा को, गुरु के संदेश को, जो व्यक्ति गुरु के संदेश की शिक्षा की सेवा कर रहा है, वही एक्चुअली में गुरु की पूजा कर रहा है, बाकी गुरु की पूजा करने का कोई और तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, शर्म आनी चाहिए आपको, ये सबके सामने बोल रहे हैं मठ के अंदर बैठकर। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे प्यारे गुरु भाइयों, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही, हाँ, आप एक धंधे की तरह, हाँ, अपने शिष्य बढ़ा रहे हो, व्यापार कर रहे हो आप शिष्य बढ़ाने का। हमारे स्वामी ने, हमारे गुरु ने बोला था कि प्रचार करो, जो कनिष्ठ भक्त है उसको मंदिर में रहने दो और घंटी बजाने दो, हाँ, लेकिन आप अपने आसपास देखो कितनी खराब सिचुएशन हो चुकी है, हालात कितने खराब हो चुके हैं, हाँ, हर कोई मठ के अंदर भी, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने गुरु भाइयों को डायरेक्टली, कौन कह सकता है यार मैं करना, और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मठ के अंदर भी जो मठ में रहने वाले हैं वो भी भोगी बन गए हैं और उन्होंने प्रचार को छोड़ दिया है, उन्होंने प्रचार को छोड़ दिया है। उन्होंने बोला यार सब चीजें छोड़ दो प्लीज, ये आलस्य को छोड़ दो, भोग को छोड़ दो और आओ सब मिलके प्रचार करते हैं। जब हम सब मिलके प्रीचिंग करेंगे, प्रचार करेंगे, तो हमारे गुरु की सेवा ढंग से होगी। श्रील प्रभुपाद ने बोला आओ हम सब मिलके प्रण करें, व्रत लें, ये प्रॉमिस करें, अपनी सारी पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी सब छोड़ दो प्लीज, सारे इकट्ठे होके आओ प्रचार करो। कई लोगों को बहुत गुस्सा आया, कई लोगों ने सुना छोड़ दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। श्रील प्रभुपाद घर घर जा रहे थे, जब कुछ भी नहीं था एक्चुअली में, जब श्रील प्रभुपाद ने ये जापान के ये बात हुई, और श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी थी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसका क्या नाम है, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, तो श्रील प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखी थी, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था लोगों से। तो श्रील प्रभुपाद ने तब ये निर्णय किया कि पुस्तकें जो हैं, पुस्तकें एवरलास्टिंग बहुत बड़ा उसका असर होता है। तो उस समय श्रील प्रभुपाद, मैं दोबारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक टाइपराइटर का इंतजाम किया। जब वो छिपीवाड़ा मंदिर में रहते थे तो भी सुबह 1 बजे उठ के श्रील प्रभुपाद उस पर टाइप करते थे भागवतम के प्रपोर्ट्स, और टाइप करके वो कागजों को एक के ऊपर एक रखते थे, उसके ऊपर पत्थर रख देते थे ताकि उड़ नहीं जाए कागज। छिपीवाड़ा मंदिर में जब राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद ने शिफ्ट हुए, वहां भी सुबह 1 बजे बैठ के प्रभुपाद टाइपिंग करते थे। कैसे छपेगा, कब छपेगा, कौन पढ़ेगा, कुछ पता नहीं है, पैसे कहां से आएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए संघर्ष किया। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ते तो बेसिकली धिक्कार है हमारे ऊपर। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों को बोल रहे हैं शेम ऑन यू, तो एक्चुअली में अगर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ रहे, अगर हम श्रील प्रभुपाद की जो करुणा है उसको अगर हम अनुभव नहीं कर रहे, श्रील प्रभुपाद पूरे संसार का कल्याण करने की जो श्रील प्रभुपाद की इच्छा है अगर हम उसको नहीं समझ रहे, तो धिक्कार है हमारे पर, शेम ऑन अस। श्रील प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा बढ़ाओ, श्रील प्रभुपाद कि सिर्फ जय बोलने से बात नहीं पड़ेगी, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, और ग्रंथों को पढ़ो और दूसरों को बताओ आपने क्या पढ़ा है, तो आपकी लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगी, आपके जीवन सफल हो जाएगा और दूसरे का फायदा होगा, और तो कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के हम अनुयायी हैं, हम उनके अनुगत हैं, नहीं तो ढकोसला है सारी चीज, बेकार है ढकोसला, प्लीज मत करो, प्लीज अपने आप से धोखा करना बंद कर दो और पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद को समर्पित हो जाओ। आधा अधूरा करने से नहीं बनेगी बात। आखिर क्यों टाइम नहीं मिल रहा है प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने के लिए, छोड़ दो चीजों को यार, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ लो, अपने जीवन को चेंज करो। अगर नहीं चेंज कर पा रहे खुद से, आप डिवोटी से बात करो, गुरु से बात करो, गुरु की शरण लो, वो आपको समझा देंगे कैसे करना है। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को इतनी ज्यादा महत्व देके जो मुख्य लक्ष्य है जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा, अगर हमने उस पे ध्यान नहीं दिया तो ये जीवन भी बेकार हो जाएगा, ये जीवन भी बेकार हो जाएगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्रभुपाद की भगवत गीता अगर आपको भारी लगती है कि हैवी किताब है, छोटी पुस्तकें प्रभुपाद की पढ़ना शुरू करो, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आप चर्चा करो आपस में मिलके। जब हम आपस में मिलकर चर्चा करेंगे, प्रभुपाद की बातें हमारी समझ में आना शुरू हो जाएंगी, तो अपने आप आपका आपकी रुचि बढ़ेगी और ज्यादा पढ़ने में। और प्रभुपाद ने मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। सारे आचार्यों का, पूरी गुरु परंपरा की शिक्षाओं का सार श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में बहुत ही सरल तरीके से दे दिया। क्यों श्रील प्रभुपाद में श्रद्धा लाने की जरूरत है? क्योंकि किसी का भी फॉल डाउन हो सकता है। हमारे आसपास जो भी डिवोटी हमें दिख रहे हैं, आफ्टर ऑल सब बदजीव हैं। अगर हमारे श्रील प्रभुपाद में श्रद्धा नहीं होगी, श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन के आधार अगर नहीं होंगे, हम अपने आसपास देखेंगे अगर भक्तों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, भक्त का फॉल डाउन हो रहा है, तो हम भी छोड़ सकते हैं भक्ति को। लेकिन अगर श्रील प्रभुपाद में हमारी श्रद्धा होगी, हमारे आसपास कुछ भी होता रहे, हम विचलित नहीं होंगे। हमारे पास एक ठोस आधार होगा अपनी भक्ति को कायम रखने का, भक्ति में आगे बढ़ते रहने का। और पूरे शास्त्रों का निचोड़ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि भक्ति के बिना और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भक्ति करने की जो योग्यता, प्रेरणा, शक्ति, धैर्य, ये सब चीज प्रभुपाद से आएंगी। दूसरे भक्तों की हेल्प लो, हर भक्त के साथ संबंध बनाओ, लेकिन हमारा जो भक्ति का आधार श्रील प्रभुपाद होने चाहिए। अगर श्रील प्रभुपाद हमारे भक्ति का आधार रहेंगे, आप देखना कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी हमारे दूसरे भक्तों से संबंध भी खराब नहीं होंगे, और दूसरे भक्तों की अगर हमें कमियां दिख भी रही होंगी, तो भी हमें हमारे मन में यही विचार नहीं आएगा कि यार लोग इतने खराब, उनके मतलब हालात हैं, तो भक्ति जरूर बेकार होगी। जैसे हम श्रील प्रभुपाद को देखेंगे, श्रील प्रभुपाद की फोटो देखेंगे, श्रील प्रभुपाद के विग्रह देखेंगे, हमें तुरंत ये स्मरण हो जाएगा श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए कितने त्याग कर रखे हैं। आखिर हम श्रील प्रभुपाद का ऋण उतारेंगे तो उतारेंगे कैसे? तो हमारे मन की जो सारी उलझने अपने आप दूर हो जाएंगी, और हम श्रील प्रभुपाद का अच्छे से, श्रील प्रभुपाद का हम अनुसरण कर पाएंगे, उनकी शिक्षाओं का पालन कर पाएंगे। और जो उनका मंतव्य है, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि सभी लोगों का उद्धार होना चाहिए, वो हम कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की इच्छा, आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। सो टाइम बड़ा हो गया नहीं, सो आई एम सॉरी, मैं बीच में थोड़ा भावुक भी हो गया था, लेकिन आई मीन श्रील प्रभुपाद के लिए अगर हम लोग भाव भी नहीं दिखा पाए तो क्या फायदा है? नहीं, ओके, हाँ। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता।
तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भगवान कृष्ण जब थे उस समय प्रकट लीला में, तो सबके सामने, सबको नहीं पता था, कुछ ही लोग जानते थे कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो उस उससे आगे जब मैंने आज आपका जो प्रभुपाद के विषय में सुना तो क्या प्रभुपाद भी भगवान के उन गुण से पूरे आप्लावित थे कि उन्होंने अपना जो असली स्वरूप था वो हर व्यक्ति के आगे नहीं जग जाए क्या? उन्होंने जैसे आपने बताया कि पहले बहुत ही स्ट्रगल किया, हर किसी को उन्होंने ये जो आज उनकी ख्याति है प्रभुपाद का जो यशोगान आज हो रहा है उस समय नहीं था। और जैसा कि आपने बताया कि एक एक 25-25 पैसे के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, तो क्या वो भगवान की तरह ही अपने आप को उन्होंने छुपा रखा था उनसे?
नहीं, प्रभुपाद ने छुपा नहीं रखा था, क्योंकि प्रभुपाद तो एक्चुअली में लोगों का उद्धार करने के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार थे। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि भगवान उनको इजी कर सकते थे, जिसके पास गए देखते कल्याण हो जाए, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण कहां गया वो। ये एक्चुअली में भगवान का प्लान था। ये हम जितना प्रभुपाद के संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया और उसके बाद प्रभुपाद ने इस आंदोलन की स्थापना की, उतना ही हमारे मन में प्रभुपाद के लिए श्रद्धा बढ़ती है। तो प्रभुपाद के माध्यम से भगवान ने यह दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने, कि कोई भी परिस्थिति हो, जो भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो अपने गोल से कभी विचलित नहीं होता, ना ही भगवान में उसकी श्रद्धा कम होती है। और उसको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रहती भगवान के शुभ भक्त को कि ये होगा कि नहीं होगा। उसको पता होता है कि ये होगा, भगवान का प्लान है, भगवान के प्लान के अनुसार हर चीज अपने आप हो जाएगी, मुझे अपना प्रयास करना है बस। और ये दिखाने के बाद फिर भगवान ये बताते हैं कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और भगवान ने श्रील प्रभुपाद के माध्यम से ये दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है, एक व्यक्ति करोड़ों लोगों को प्रीच कर सकता है, जो श्रील प्रभुपाद ने किया। हाँ बिल्कुल समर्थ है प्रभुपाद की पुस्तकें, क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकें भौतिक नहीं है। एक्चुअली में एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उसने बोला कि कौन कहता है कि मैं जो उनके पूर्ववर्ती फिलोसफर्स हैं, पहले के फिलोसफर हैं 100-200 साल पहले के, उसने कहा कि कौन कहता है मैं उसका संग नहीं कर सकता, मैं उसकी पुस्तकें पढ़ता हूँ, संग कर लेता हूँ। जब भौतिक पुस्तकों में ये ताकत है, तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें तो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, उसमें क्या ये ताकत नहीं है?
तो भाई उस समय प्रत्यक्ष जब व्यक्ति संग कर रहे थे प्रभुपाद का प्रत्यक्ष आमने सामने, उस समय भी वो नहीं चेंज हो पा रहे थे, लोग भगा रहे थे उनको,
तो जैसे मैंने आपको बोला कि भगवान दिखा रहे थे कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो भी भक्त विचलित नहीं होते। भगवान श्रील प्रभुपाद को यूज कर रहे थे ये दिखाने के लिए।
ये प्रभुपाद अच्छी तरह जानते
थे। ऑब्वियसली प्रभुपाद तो बोल रहे हैं कि मुझे तो पता है मैंने भगवत धाम वापस चले जाना है। प्रभुपाद एकदम क्लियर थे। लेकिन प्रभुपाद ने बोला काष्ठेर पुतली यथा नचाओ से मते, नाचाओ से नाचाओ से नाचाओ से मते, काष्ठेर पुतली यथा नचाओ से मते। श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं तो कठपुतली हूं, आप जैसे नचाओगे मैं नाचूंगा। श्री प्रभुपाद को क्लियर था।
एक स्वामी जैसे विवेकानंद जी ने शायद इतना स्ट्रगल नहीं किया जितना प्रभुपाद ने किया, नाम तो विवेकानंद का भी आज लिया जाता है। स्ट्रगल की वजह से सिर्फ किसी को ग्लोरीफाई करना क्या ज्यादा उचित है?
नहीं, हम तो परिणाम के ऊपर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम जो परिणाम है, जो उद्देश्य है, जो गुरु परंपरा और भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है, हम उसके ऊपर आधारित हम प्रभुपाद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम विवेकानंद जी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। तो भागवतम में बताया गया है कि अगर एक गधा दूसरे गधे की प्रशंसा कर रहा है तो उसका क्या फायदा है, उसकी क्या वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग तो रावण की भी प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या करें, क्या करें, उससे क्या मिलेगा? किसकी प्रशंसा हो रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान कृष्ण के मंतव्य को, भगवान कृष्ण की शिक्षा को घर घर पहुंचाने में किसने अपना सर्वस्व झोंक दिया। जिसने भी झोंका है वो प्रशंसा का पात्र है। हमारे सामने एक ही उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद, इसलिए हम बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, थैंक यू। आप सबका बहुत ज्यादा लेट हो गया, क्या टाइम हो गया? 9:15 हो गए। 9 बजे तक प्रसाद पाके घर जाना चाहिए था, लेकिन मेरा आपसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप 7 बजे का मतलब आप लोग हैव यू स्विच्ड ऑफ दैट ज़ूम।